नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया। जननायक जनता पार्टी के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान और संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। और हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले दो दिनों में अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल मुहैया की पीठ ने समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति को चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। काबिलेगौर है कि अदालत ने हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए समिति का गठन किया है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर अम्बाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दिए थे। किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान नए सदस्यों की भर्ती और पार्टी के मौजूदा सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्री मोदी ने फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से अपनी सदस्यता के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। यह अभियान आज से 10 नवम्बर तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। सदस्यता अभियान का पहला चरण इस महीने की 25 तारीख को संपन्न होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीजेपी का चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे देश में अपने सदस्यता अभियान के हिस्से के रूप में कम से कम 10 करोड़ नए सदस्यों की भर्ती करने का लक्ष्य है। जननायक जनता पार्टी के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान और संजय कबलाना आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में इन्हें पार्टी में शामिल किया गया। जननायक जनता पार्टी हरियाणा में राजनीतिक दल है जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करते हैं। उल्लेखनीय है कि कल जींद में हुई जन आशीर्वाद रैली के दौरान जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम, अनूप धानक और जोगी राम सिहाग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के जीवन में सुधार, उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में 1,702 करोड़ रुपए की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उनकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा 860 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। 1,202 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों और 1,115 करोड़ रुपए की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा की जा रही ऐसी खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों की नियुक्ति और लोगों को 28,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने नियुक्ति से पहले 1,350 रुपए का पंजीकरण शुल्क देने संबंधी दावे का भी खंडन किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दो दिनों में अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। आज भिवानी के लोहारू हलके के विभिन्न गांवों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री दलाल ने कहा कि उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए गहनता से मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को आगे लाने पर काम कर रही है। चुनावी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। श्री दलाल ने ग्रामीणों से विकास के नाम पर वोट भी मांगे और बीजेपी सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर नौकरी दिए जाने, किसानों को उचित मुआवजा देने और लोहारू हलके में अंतिम छोर तक नहरी पानी पहुंचाने सहित विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव में लोग विकास के नाम पर मतदान करेंगे। पेरिस पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने आज पुरूषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने पहले ही प्रयास में 42.22 मीटर की दूरी तक छक्का फेंककर सीजन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता। आज रात पुरुष सिंगल्स की SL4 श्रेणी के फाइनल में सुहास यतिराज का सामना फ्रांस के लुकास मजूर से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स की SL4 श्रेणी के कांस्य पदक मुकाबले में सुकांत कदम अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स बैडमिंटन की SU5 फाइनल स्पर्धा में आज रात तुलसी मथी का सामना चीन की यांग शुजिया से होगा। आज तीरंदाजी और भाला फेंक में भी पदक के लिए भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। समाचार लिखे जाने तक भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य के साथ अब तक कुल 8 पदक जीते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर जीन के पांडू पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर लाखों श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया और पिंडदान कर तर्पण किया। कल शाम से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए और वाहनों की पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। महाभारत काल से ही सोमवती अमावस्या पर यहां पिंडदान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहां 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की और अमावस्या आने पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तब से ही श्रद्धालु यहां पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना के साथ पिंडदान करते हैं। उधर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर भी आज विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की और पितृ शांति के लिए पिंडदान व अन्य विधि विधान किए। हरियाणा के कई जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मशीनों की पहली रैंडमाइजेशन की गई। अम्बाला के जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने बताया कि आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष 268 मतदान केंद्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मशीनों की पहली रैंडमाइजेशन की गई। उन्होंने बताया कि पूरी गतिविधियों की वीडियोग्राफी भी करवाएगी। ईवीएम प्रबंधन प्रणाली के तहत ये सारा काम किया गया। उन्होंने बताया कि रैंडमाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरों ने किया। बाद में ईवीएम और वीवीपैट आवंटित की गई। पंचकूला में भी आज पहली रैंडमाइजेशन की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष सभी मतदान केंद्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों की पहली रैंडमाइजेशन की गई। फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 100 पेटी अवैध शराब, एक गाड़ी, 2 स्कूटी और एक मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम नितिन है, जो मेरठ का रहने वाला है और फिलहाल फरीदाबाद के लक्कड़पुर में रह रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया। जननायक जनता पार्टी के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान और संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।